हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। अब जैसे ही दो टूक तरीके से दादी ने ये फरमान सुनाया, अब तो आकांक्षा का पारा चढ़ चुका था। लेकिन फिर उसने अपने चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान लाकर वो चंचलता से बोली, ठीक है, मैं एक काम करती हूँ, मैं घर जाकर मम्मी पापा को ये खुशखबरी बता देती हूँ। मेरी बहन मिल चुकी है। इतने दिनों से वो दोनों झलक के लिए बहुत ज्यादा परेशान थे। एक बार फिर अपनी एक्टिंग बरकरार रखते हुए आकांक्षा ने ये निराशा से बताया और एक नज़र से झलक की ओर देखते हुए वहाँ से सीधा बाहर की ओर चल पड़ी। और वहाँ से सीधा ओबेरॉय मेंशन पहुँचकर उसने बेजान चीज़ों पर अपना गुस्सा उतारना शुरू कर दिया था। वो तिलमिला उठी और फिर अपने माँ बाप को दादी से हुई सारी बातें एक एक करके बता देती है। जल्दी ही मिस्टर एंड मिसेस ओबेरॉय एक दूसरे की ओर कुछ अजीब तरीके से देखने लगे और फिर अगले ही पल बेफिक्र होकर बोले, वहाँ चलने की तैयारी करो। वहीं दूसरी ओर इस वक्त दादी झलक को छोड़ने के लिए एक मिनट के लिए भी तैयार नहीं थीं। वो बार बार झलक के खूबसूरत चेहरे को छू छू कर देख रही थीं। ऐसा लग रहा था मानो दादी को कोई खिलौना मिल गया हो और वो बार बार चहकते हुए बोल रही थीं, सच में मैंने तुमसे ज्यादा खूबसूरत लड़की अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखी है। झलक के होठों के पास एक छोटा प्यारा सा काला तिल और उसकी बड़ी बड़ी आँखें गहरे भूरे रंग की और एकदम चांद सा खूबसूरत गोरा रंग दाग धब्बे रहे चेहरा उसे बहुत ही ज्यादा खूबसूरत बनाता था। वेल, तभी दादी झलक की ओर फुसफुसाते हुए बोली, तुमने पहले अपनी खूबसूरती क्यों नहीं दिखाई? हो सकता था मेरे इस नालायक लड़के को उस समय पर अक्ल आ जाती। कहीं ना कहीं दादी का इशारा सीधा सीधा सिद्धार्थ और झलक के एक साथ होने से था, क्योंकि दादी शुरू से ही झलक को सिद्धार्थ के लिए पसंद करती थीं। लेकिन जब सिद्धार्थ ने झलक की जगह आकांक्षा को अपने जीवन साथी के रूप में चुना है, तो अब दादी ने झलक को पूरे दिल से अपनी बेटी बनाने का फैसला कर लिया था। तब दादी झलक से बात करते करते सिद्धार्थ की ओर देखकर खुश होते हुए बोली, अच्छा सिद्धार्थ, एक काम करो, पूरे शहर भर के सबसे अमीर एक से बढ़कर एक लड़कों की लाइन लगा दो। मैं चाहती हूँ कि मैं सबसे अमीर खानदान में अपनी प्यारी पोती झलक की शादी तय करूँ। अब जैसे ही दादी ने ये आदेश दिया, सिद्धार्थ के दिल में अजीब सा दर्द उमड़ उठा। वो बार बार झलक और दादी दोनों को देख रहा था और मन ही मन में सोच रहा था, इससे अच्छा तो ये लड़की बदसूरत ही रहती। कम से कम मेरे अलावा कोई और इसे तो पसंद नहीं करता। लेकिन ये क्या, दादी तो अब दुनिया भर के अमीर लोगों से इसे मिलवाना चाहती हैं। कहीं ना कहीं सिद्धार्थ इस वक्त अजीब सी कश्मकश का शिकार था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसे इतनी ज्यादा अकेलापन और बेचैनी क्यों महसूस हो रही है। फिर सिद्धार्थ ने खुद के इमोशंस पर कंट्रोल करके दादी की ओर देखकर बोला, अरे दादी, ये गांव में पली बढ़ी एक देहाती और गवार लड़की है, भला इसे कौन लड़का पसंद करेगा? हाँ, अब जैसे ही सिद्धार्थ ने थोड़ा सा मुंह बनाकर झलक की बेइज्जती करते हुए ये बात बोली, दादी को बहुत गुस्सा आया था। इस वक्त उनके हाथ में एक चाय का कप था। उन्होंने वो कप सिद्धार्थ के पैरों के पास फोड़ दिया था और उसे घूरते हुए एक एक शब्द पर जोर देते हुए बोली, खबरदार, अगर तुमने मेरी बेटी के बारे में कुछ भी उल्टी सीधी बातें कहीं, मेरी एक बात कान खोल कर सुन ले। वो मेरी धर्म पोती है, उसे मैंने अपनी पोती बनाया है और तुम उसके साथ रिश्ता मानो या ना मानो, क्योंकि तुम दोनों के बीच जो कुछ हुआ उसके बाद में ये भी नहीं बोल सकती कि तुम उसे अपनी तो मुंह बोली बहन मानो, लेकिन मैं उसे अपनी बेटी मानती हूँ, तो अब अपनी मर्यादा में रहना और उसे ज्यादा परेशान करने की कोशिश मत करना, समझे तुम? जैसे ही दादी ने झलक का इस तरह से पक्ष लिया, सिद्धार्थ की तो आंखें बाहर निकलने को तैयार थीं, क्योंकि दादी झलक को कितना प्यार कर रही थीं, कितना पसंद कर रही थीं, ये दादी के व्यवहार में साफ साफ झलक रहा था। तभी दादी एक बार फिर झलक के पास गई और उसका हाथ पकड़कर बड़े ही प्यार से उसकी ओर देखकर एकदम से बोली, अच्छा बेटा, मैं तुमसे सिर्फ दो सवाल करना चाहती हूँ, और तुम आकांक्षा को इतना नापसंद क्यों करती हो और ओबेरॉय परिवार के साथ तुम क्यों नहीं रहती? अब जैसे ही झलक ने ये बात सुनी, वो एकदम चुप हो गई थी। उसके एक्सप्रेशंस अचानक से बदल गए, क्योंकि झलक दोनों ही सवालों का जवाब नहीं देना चाहती थी। लेकिन क्योंकि दादी ने हमेशा से उसकी मदद की थी, इसीलिए वो दादी को झूठ भी नहीं बोलना चाहती थी। लेकिन उसकी दादी की हालत ऐसी थी कि वो दादी को पूरा सच बताकर उन्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। अगर वो चाहती तो उसके माता पिता पर हुए हमले, साथ साथ उस पर जानलेवा हमले करने से लेकर उसके बदसूरत बनने पर मजबूर करने तक सारी घटनाएं दादी को बता देती। लेकिन फिलहाल उसने गहरी सांस लेते हुए बेहद शांत आवाज में कहा, दादी, ओबेरॉय परिवार शुरू से ही नहीं चाहता था कि मैं उनके पास रहूं। वो मुझे पहले से ही जानते थे और उन्हें मेरी जरूरत सिर्फ अपने बेटे आरव ओबेरॉय को बोन मैरो डोनेट करने के लिए थी। जैसे ही दादी ने ये सुना, उनकी हैरानी और उलझन काफी ज्यादा बढ़ गई थी और वो अपने गुस्से को दबाते हुए आगे बोली, ये क्या कह रही हो तुम? क्या आकांक्षा का बोन मैरो उनके बेटे से मैच नहीं हुआ जो वो तुम्हें वहाँ रहने के लिए मजबूर कर रहे थे? तब झलक दर्द भरी मुस्कान से बोली, नहीं, मेरा ही बोन मैरो शायद आरव के साथ मैच हुआ था, इसीलिए वो मुझे बोन मैरो डोनेट करने के लिए ढूंढ रहे थे, वरना वो तो कभी मुझे अपनाना और देखना भी नहीं चाहते थे। दादी ने जैसे ही ये सुना, उनकी तो हालात पूरी तरह से खराब हो चुकी थी और वो समझ चुकी थी कि वो कितना ज्यादा लालची और मतलबी परिवार है। दादी को कहीं ना कहीं इस बात से झलक के लिए काफी ज्यादा हमदर्दी महसूस होने लगी थी। हालांकि झलक ने पूरी बात दादी को नहीं बताई थी, लेकिन इसी बात को सुनकर दादी का खून खौल उठा था और वो घूर कर सिद्धार्थ की ओर देखने लगी और फिर अगले ही पल खड़ी होकर बोली, सुनो लड़के, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, मेरे साथ आओ। ऐसा बोलकर वो झलक को वहीं बैठे रहने का कहकर, उसे कुछ चाय नाश्ता करने को कहकर सिद्धार्थ के साथ कमरे में चली गई थीं। और अकेले कमरे में सिद्धार्थ की ओर देखकर अफसोस जताते हुए बोली, देखा तुमने, ओबेरॉय परिवार कितना ज्यादा मतलबी परिवार है। तुमने देखा उन्होंने किस तरह से झलक को परेशान किया। मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो, ये बात सच है कि तुम आकांक्षा को पसंद करते हो, उससे शादी करना चाहते हो, लेकिन एक बात याद रखना, तुम्हारी वो बीवी आकांक्षा मेरे इस खुराना मेंशन में नहीं रहेगी, समझे तुम? उसे आसपास भी भटकने मत देना। दादी ने सीधे सीधे सिद्धार्थ को ये तो नहीं बोला कि वो आकांक्षा से अपनी सगाई खत्म कर ले, लेकिन कहीं ना कहीं उनका मतलब यही ही था, लेकिन वो चाहकर भी पूरी बात नहीं कह पाई थी। वहीं सिद्धार्थ ने अपने हाथों की मुट्ठियों को कसकर बंद कर लिया था। कहीं ना कहीं उसे अब यही लगने लगा था कि झलक दादी की सहानुभूति हासिल करना चाहती थी और दादी की नजरों में आना चाहती थी और वो किसी न किसी बात का सहारा लेना चाहती या फिर बताई गई बातों का इस्तेमाल करके ओबेरॉय परिवार पर निशाना साधना चाहती है। अचानक सिद्धार्थ ने गुस्से से अपने नाखूनों को एकदम से कसकर अपनी उंगलियों में धंसा लिया था और झुंझलाकर मन ही मन में बुदबुदाता है, नहीं मिस झलक ओबेरॉय, मैं इस तरह से अपनी दादी के इमोशन के साथ तुम्हें खेलने नहीं दूंगा। अगर तुम कुछ प्लान कर भी रही हो तो मैं तुम्हारा प्लान सक्सेसफुल नहीं होने दूंगा। इसके लिए मैं तुम्हें 24 घंटे अपनी नजरों के सामने रखूंगा ताकि तुम मेरी दादी के खिलाफ किसी तरह का कोई प्लान ना बना सको। सिद्धार्थ कुछ पल सोचते हुए सीधा गुस्से से बाहर चला आया था। उस वक्त दादी झलक के लिए कुछ स्पेशल खाने का इंतजाम करने के लिए सीधा किचन में चली गई थी
और झलक इस वक्त वहीं ड्राइंग रूम में बैठी हुई थी। अब सिद्धार्थ जल्दी से दनदनाते हुए झलक के पास गया, उसका हाथ पकड़कर झटके से उसे खींच कर खड़ा कर दिया और सीधा उसे गार्डन साइड की एक दीवार पर ले जाकर लगा दिया था। इस वक्त सिद्धार्थ और झलक दोनों ही एक दूसरे के काफी करीब थे और दोनों के जिस्म एक दूसरे से टकरा रहे थे। तब सिद्धार्थ झलक की ओर नफरत भरी नजरों से देख रहा था और फिर उसे घूरते हुए सर्द आवाज में बोला, मैंने तुमसे ज्यादा चालबाज लड़की अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखी है। आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी दादी के खिलाफ साजिश रचने की?